एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में सच में लाखों लोगों की जिंदगी को दिशा दी है, स्टीफन कोवी की अत्यंत प्रभावी लोगों की 7 आदतें।
नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई एक माइलस्टोन है, और दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी उतनी ही, बल्कि शायद आज की भागदौड़ में तो और भी ज्यादा जरूरी लगती है ना?
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे आज सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें हो गया है, पैसा, पद, शोहरत, पर ये किताब हमें वापस अंदर देखने को कहती है, अपने चरित्र की ओर।
सही कहा। और ये सिर्फ काम या पैसे की बात नहीं है, ये एक संतुलित, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का तरीका बताती है। अक्सर लगता है ना कि सब कुछ पाकर भी कुछ खाली खाली सा है।
हाँ, वो अंदरूनी संतुष्टि वाली बात, ये किताब उसी खालीपन को भरने का रास्ता दिखाती है, लेकिन कोई फटाफट वाला नुस्खा नहीं, बल्कि ठोस सिद्धांत और आदतें। और मुझे लगता है इसमें भूमिका यानी हमारे रोल्स और लक्ष्य यानी गोल्स, इनकी स्पष्टता पर काफी जोर है।
बिल्कुल, कोवी का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सच्ची इफेक्टिवनेस, मतलब जो लंबे समय तक चले, वो बाहरी दिखावे या शॉर्टकट से नहीं आती, जिसे वो पर्सनालिटी एथिक कहते हैं। भाई अच्छा दिखो, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करो।
अच्छा,
वो कहते हैं असली चीज है कैरेक्टर एथिक, हमारा अंदरूनी चरित्र, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत। ये है अंदर से बाहर वाला नजरिया, मतलब बदलाव पहले अपने अंदर लाना होगा।
तो चलिए जरा इस नजरिए को देने वाले लेखक स्टीफन आर कोवी के बारे में जानते हैं। 1932 में जन्मे थे, 2012 में गुजर गए। सिर्फ लेखक नहीं थे, वो तो एक माने हुए लीडरशिप एक्सपर्ट, टीचर, सलाहकार सब थे। हार्वर्ड से MBA, BYU से डॉक्टरेट, अकादमिक तौर पर भी बहुत मजबूत थे।
हाँ, और उनकी सबसे खास बात थी उनका रिसर्च। उन्होंने करीब 200 साल का सक्सेस लिटरेचर, मतलब सफलता पर जो भी लिखा गया उसको खंगाला।
200 साल!
हाँ, और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा कि पिछली सदी में धीरे धीरे फोकस बदल गया। पहले जोर चरित्र पर था, ईमानदारी, हिम्मत, न्याय, इन चीजों पर। और फिर धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो गया पर्सनैलिटी पर, आपकी इमेज कैसी है, आप कितने पॉजिटिव दिखते हैं, बातचीत की टेक्निक क्या है, इस सब पर।
तो मतलब असली होने से ज्यादा अच्छा दिखने पर जोर आ गया।
हाँ, कुछ वैसा ही। कोवी इसी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी वाली तकनीकें काम तो करती हैं, पर ऊपर ऊपर। अगर अंदर चरित्र की नींव मजबूत नहीं है तो ये टिकाऊ नहीं है।
तो उनकी किताब कोई नई खोज नहीं है, बल्कि जो पुराने हमेशा से चले आ रहे सिद्धांत हैं उनको एक साथ पिरोया है।
एग्जैक्टली, वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स का एक शक्तिशाली सिंथेसिस है, और यही बात उन्हें इतना भरोसेमंद बनाती है इस विषय पर। अब अगर किताब के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये पर्सनल और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए एक सिद्धांत केंद्रित, मतलब प्रिंसिपल सेंटर्ड फ्रेमवर्क है।
मकसद सिर्फ कुछ टिप्स देना नहीं है।
नहीं,
मकसद है हमारे सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, जिसे कोवी पैराडाइम कहते हैं, उसमें एक बुनियादी बदलाव लाना।
और ये बदलाव एक सफर जैसा है ना, जिसे वो परिपक्वता का क्रम या मैच्योरिटी कंटिन्यूनम कहते हैं। शुरुआत होता है निर्भरता से, डिपेंडेंस, जैसे बचपन में हम दूसरों पर निर्भर होते हैं।
हाँ।
फिर आता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, जहां हम आत्मनिर्भर बनते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। लगता है बस यही मंजिल है,
लेकिन कोवी कहते हैं नहीं।
हाँ, वो कहते हैं कि ये तो एक पड़ाव है। असली मंजिल, या कहले उच्चतम स्तर, है अन्योन्याश्रयता, इंटरडिपेंडेंस, ये समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करने से अकेले काम करने से कहीं बेहतर नतीजे मिलते हैं।
तो स्वतंत्रता से भी आगे।
हाँ, स्वतंत्रता जरूरी है, पर सच्ची इफेक्टिवनेस अन्योन्याश्रयता में है। इस यात्रा के 3 हिस्से हैं। पहली 3 आदतें हैं निजी जीत, प्राइवेट विक्ट्री, ये खुद पर काबू पाने, चरित्र बनाने के बारे में है,
सेल्फ मास्टरी।
बिल्कुल। अगली 3 आदतें हैं सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री, ये अच्छे रिश्ते बनाने, संवाद करने, मिलकर काम करने पर हैं,
टीम वर्क और रिलेशनशिप्स।
और 7वीं आदत है नवीकरण, रिन्यूअल, ये सब आदतों को ताजा रखने, लगातार बेहतर होते रहने के लिए।
इसमें वो PPC बैलेंस वाली बात भी बड़ी अहम है। P मतलब प्रोडक्शन, जो नतीजे हम चाहते हैं, जैसे सोने के अंडे, और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो क्षमता या संपत्ति जो नतीजे देती है, जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, वो कहानी याद है ना?
हाँ बिल्कुल, क्लासिक है। अगर सिर्फ अंडों पर ध्यान दोगे और मुर्गी को भूखा मारोगे तो अंडे कहाँ से मिलेंगे?
सही बात है।
वैसे ही अगर हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागे और अपनी क्षमता, हमारा स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, सीखने की काबिलियत हो, उसका ध्यान न रखें तो लंबे समय में नतीजे भी नहीं मिलेंगे। दोनों में बैलेंस साधना जरूरी है।
चलिए अब इन आदतों में थोड़ा और उतरते हैं। निजी जीत की पहली तीन आदतें। पहली, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। इसका सीधा मतलब है भाई, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठो। मानो कि कोई भी चीज होती है स्टिमुलस, और हम जो करते हैं रिस्पॉन्स, उसके बीच एक गैप होता है। उस गैप में चुनने की आजादी है, और उसी चुनाव में हमारी ग्रोथ और आजादी है।
सुनने में आसान लगता है पर ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोच में। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? हालात को दोष देते हैं, मौसम को, दूसरों को, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया,
मैं क्या कर सकता था।
जबकि प्रोएक्टिव लोग समझते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया उनके हाथ में है। वो मौसम नहीं बदल सकते पर अपना रवैया चुन सकते हैं। ट्रैफिक जैम में फंस गए तो चिल्लाने के बजाय शांत रह सकते हैं या कुछ सुन सकते हैं। ये चुनाव उनका है।
यहाँ वो प्रभाव का क्षेत्र और चिंता का क्षेत्र वाला आइडिया बहुत काम का है। चिंता के घेरे में सब कुछ है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं। दुनिया की प्रॉब्लम्स, दूसरों की गलतियाँ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी।
और प्रभाव के घेरे में
वो चीजें जिन्हें हम बदल सकते हैं, हमारी आदतें, हमारे स्किल्स, हमारा बर्ताव, हमारी प्रतिक्रियाएं।
और प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं?
अपने प्रभाव के घेरे पर, उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं।
और उससे क्या होता है?
धीरे धीरे उनका प्रभाव का घेराव बढ़ता है। और रिएक्टिव लोग वो चिंता के घेरे में ही फंसे रहते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं,
और उनका प्रभाव का घेरा सिकुड़ता जाता है। वो और लाचार महसूस करते हैं। तो ये पहली आदत, प्रोएक्टिव होना, ये बाकी सबकी नींव है। अगर जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे तो बाकी आदतें कैसे अपनाएंगे?
बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी आदत पर। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये है पर्सनल लीडरशिप। ये सवाल पूछती है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। कोवी एक बड़ा पावरफुल सवाल पूछते हैं, सोचिए आप अपने फ्यूनरल पर हैं, आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें?
ओह, ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल में हमारे लिए क्या जरूरी है।
हाँ,
यहीं पर वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की बात करते हैं। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, आपका पर्सनल संविधान। इसमें आपके सबसे गहरे मूल्य क्या हैं, आपकी सबसे जरूरी भूमिकाएं क्या हैं, जैसे आप माँ पिता हैं, जीवन साथी हैं, प्रोफेशनल हैं, दोस्त हैं, समाज के सदस्य हैं, और हर भूमिका में आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या हैं, किन सिद्धांतों पर आप चलेंगे, ये सब इसमें साफ होता है।
तो ये एक तरह का कंपास बन जाता है कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो देख सकें कि क्या ये मेरे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता है, अपनी भूमिकाओं के हिसाब से सही है।
बिल्कुल। ये आदत कहती है कि भाई दौड़ने से पहले ये तो देख लो कि सही दिशा में दौड़ रहे हो या नहीं। कोवी इसे लीडरशिप, सही काम करना, और मैनेजमेंट, काम सही तरीके से करना का फर्क बताते हैं। पहले लीडरशिप, सही दिशा तय करो, फिर मैनेजमेंट, उस दिशा में कुशलता से बढ़ो।
ये आदत दिशा तय करने की है। और तीसरी आदत जो इस निजी जीत को मुकाम तक पहुंचाती है, वो है पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर दूसरी आदत ने दिशा बताई तो ये आदत उस दिशा में रोज कदम बढ़ाने के बारे में है। ये है पर्सनल मैनेजमेंट, अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन पर अमल करना।
यहाँ आता है कोवी का मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कामों को दो आधार पर बांटा जाता है, कितने जरूरी हैं और कितने अर्जेंट हैं।
हाँ, वो चार खाने वाला।
हाँ, पहला खाना क्वाड्रेंट वन, जरूरी भी अर्जेंट भी, जैसे कोई क्राइसिस, एकदम नजदीक की डेडलाइन।
ओके।
दूसरा खाना क्वाड्रेंट टू, जरूरी पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना, समस्याओं को होने से रोकना।
अच्छा।
तीसरा खाना क्वाड्रेंट थ्री, अर्जेंट पर जरूरी नहीं, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के छोटे मोटे अर्जेंट काम जो हमारे लिए जरूरी नहीं। और चौथा क्वाड्रेंट फोर, न जरूरी न अर्जेंट, मतलब टाइम वेस्ट, फालतू की चीजें।
तो ज्यादातर लोग कहाँ फंसे रहते हैं, पहले और तीसरे में, अर्जेंसी की आग बुझाने में।
हाँ, और यही गलती होती है। इफेक्टिव लोग कोशिश करते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे खाने क्वाड्रेंट टू में लगाएं।
यानी ये जो जरूरी है पर अभी चिल्ला नहीं रहा।
एग्जैक्टली ये वो काम है जो शायद आज शोर नहीं मचा रहे पर लंबे समय में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये वो काम है जो हमारी दूसरी आदत में तय की गई भूमिकाओं और लक्ष्यों से सीधे जुड़े होते हैं। यहीं से असली प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस आती है।
इसे समझाने के लिए वो बड़ी चट्टानों वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है।
हाँ बताओ ना।
कि एक खाली जार लो, उसमें कुछ बड़ी चट्टाने रखो, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं क्वाड्रेंट टू के काम। फिर कुछ कंकड़ डालो, छोटे मोटे जरूरी काम। फिर रेत डालो, फालतू की चीजें। अगर आप पहले रेत और कंकड़ भर दोगे तो बड़ी चट्टानों के लिए जगह
बचेगी ही नहीं।
लेकिन अगर पहले बड़ी चट्टाने डाल दो
तो कंकड़ और रेत उनके बीच की खाली जगह में फिट हो जाएंगे। इसका मतलब है हफ्ते की शुरुआत में अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपनी बड़ी चट्टानें पहचानो और उन्हें अपने शेड्यूल में पहले जगह दो, फिर बाकी चीजें भरो। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए।
तो ये थी निजी जीत की तीन आदतें, जिम्मेदारी लेना, दिशा तय करना और प्राथमिकता पर अमल करना। अब चलते हैं सार्वजनिक जीत की तरफ, जहां रिश्ते और दूसरों के साथ काम करना आता है।
हाँ, और यहाँ आने से पहले एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, भावनात्मक बैंक खाता, इमोशनल बैंक अकाउंट। सोचो हर रिश्ते में हमारा एक अदृश्य खाता है, विश्वास का खाता।
अच्छा,
जब हम वादा निभाते हैं, मेहरबानी दिखाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, माफी मांगते हैं, तो हम इस खाते में जमा करते हैं। और जब वादा तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, धोखा देते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, तो निकासी करते हैं। मजबूत रिश्तों के लिए इस खाते में लगातार पॉजिटिव डिपॉजिट करना पड़ता है।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अब चौथी आदत, सबकी जीत सोचें, थिंक विन विन। ये एक माइंडसेट है कि किसी भी बातचीत या डील में ऐसी कोशिश करो जिसमें दोनों पार्टियों का फायदा हो। ये मैं जीतू तुम हारो, विन लॉस, या तुम जीतो मैं हारूं, लूज विन से एकदम अलग है।
कोवी कहते हैं कि देखो हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट। तो लंबे समय में सिर्फ विन विन ही चलता है। विन लूज से थोड़े टाइम का फायदा हो सकता है पर रिश्ते बिगड़ते हैं
और आगे सहयोग मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल, लूज विन में आप दबते जाते हो और लूज लूज में तो दोनों का ही नुकसान है।
एक और ऑप्शन है, विन विन और नो डील। मतलब अगर दोनों की जीत का रास्ता नहीं निकल रहा तो डील ना करना ही बेहतर है।
पर क्या ये हमेशा पॉसिबल है, खासकर कंपटीशन वाले माहौल में?
देखो आसान नहीं है, हमेशा संभव भी नहीं होता, पर ये एक सिद्धांत है जिसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए चाहिए प्रचुरता की मानसिकता, एबंडेंस मेंटालिटी। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, मौके हैं, रिसोर्स हैं, और इसका उल्टा है अभाव की मानसिकता, स्केर्सिटी मेंटालिटी।
हाँ, कि अगर किसी और को कुछ मिला तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा, ये डर।
विन विन सोचने के लिए हिम्मत भी चाहिए और दूसरों की जरूरतें समझने की सेंसिटिविटी भी। और दूसरों को समझने की बात हमें लाती है पांचवी आदत पर, पहले समझने की कोशिश करें फिर अपनी बात समझाएं।
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।
ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक लगती है मुझे।
हाँ है तो, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है हम या तो सलाह देने लगते हैं या अपना किस्सा सुनाने लगते हैं या मन में जवाब तैयार करने लगते हैं।
सही कहा,
हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। कोवी इसे कहते हैं सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पथेटिक लिसनिंग। सिर्फ शब्द नहीं सुनना, उनके पीछे की भावनाओं, जरूरतें, उनका नजरिया समझने की कोशिश करना, कान से, आंख से और दिल से सुनना।
वो सबवे वाले आदमी का किस्सा बताते हैं ना, वो कैसे कोवी पहले बहुत गुस्सा थे कि इसके बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं।
हाँ।
और ट्रे जब पता चला कि वो अभी अस्पताल से आ रहा है जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई है और वो खुद समझ नहीं पा रहा क्या करे, तो कोवी का गुस्सा एकदम सहानुभूति में बदल गया।
बिल्कुल, वो किस्सा दिखाता है कि जब हम वाकई किसी के नजरिए को समझ लेते हैं तो हमारा पूरा पैराडाइम, पूरा नजरिया बदल सकता है। इससे न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है बल्कि वो जो भावनात्मक बैंक खाता है ना,
हाँ,
उसमें बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है। जब सामने वाले को लगता है कि हाँ इसने मुझे सच में समझा, तब जाके वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होता है। तो क्रम यही है, पहले समझो फिर समझाओ।
समझ और विश्वास की इस नींव पर खड़ी है छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। यह है क्रिएटिव कोऑपरेशन का सिद्धांत। मतलब जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा उनके अलग अलग काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है, जैसे 1+1=3 या 5 या 10।
सिनर्जी का मतलब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना या बर्दाश्त करना नहीं है, इसका मतलब है मतभेदों को वैल्यू देना, उन्हें एक ताकत समझना।
अच्छा, मतभेदों को ताकत समझना, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकत वाले लोग एक साथ आते हैं और उनमें आपसी विश्वास होता है, जो आदत 4 और 5 से बना है, खुलापन होता है, तो वो ऐसे नए और बेहतर समाधान खोज सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था।
तो मतलब डिफरेंसेस टकराव का कारण नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का सोर्स बन सकते हैं।
बिल्कुल, सिनर्जी तभी होती है जब पिछली 5ों आदतें काम कर रही हों। आप प्रोएक्टिव हो, आपका लक्ष्य साफ हो, आप जरूरी चीजों पर फोकस कर रहे हो, आप विन विन सोच रहे हो और आप पहले दूसरों को समझ रहे हो, ये सब मिलकर सिनर्जी का माहौल बनाते हैं। ये टीम वर्क और इनोवेशन का पीक है।
निजी और सार्वजनिक जीत तो हो गई, तो क्या काम खत्म, सफर पूरा?
नहीं, यही आती है 7वीं और बहुत जरूरी आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये है खुद को रिन्यू करने का सिद्धांत, निरंतर सुधार, अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को मेंटेन करना और बेहतर बनाना।
वो लकड़हारे वाली कहानी यहाँ फिट होती है।
हाँ, वो लकड़हारा जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि अपनी कुंदारी को तेज करने का टाइम ही नहीं निकालता।
नतीजा, मेहनत ज्यादा, पेड़ कम कटते हैं।
बिल्कुल, वैसे ही अगर हम खुद को रिचार्ज और रिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। कोवी इसके 4 आयाम बताते हैं। 1, शारीरिक, कसरत, अच्छा खाना, पूरी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 2, मानसिक, पढ़ना, लिखना, नई चीजें सीखना, योजना बनाना। 3, सामाजिक भावनात्मक, रिश्तों में निवेश करना, वो इमोशनल बैंक अकाउंट, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को समझना, आदत 4, 5, 6 यहां भी काम आती हैं। 4, आध्यात्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान करना, प्रकृति में वक्त बिताना, या जो भी आपको अंदर से शांति और प्रेरणा दे।
तो ये 4 आयाम हमारी मुर्गी पीसी हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि हम जीवन के अलग अलग एरिया में सोने के अंडे पी पाते रहें। ये आदत असल में बाकी 6 आदतों को जिंदा रखती है।
हाँ, इसे नजरअंदाज करना मतलब धीरे धीरे अपनी ही क्षमता को खत्म करना।
बिल्कुल,
कोवी इसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सर्पिल कहते हैं।
बिल्कुल,
सीखो, कमिट करो, करो और फिर सीखो, लगातार ग्रोथ का साइकिल है। तो अगर हम पूरी किताब के निचोड़ को देखें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली, चरित्र बनाम तकनीक। असली और टिकाऊ सफलता बाहरी चमक दमक से नहीं, अंदर के चरित्र और सिद्धांतों से आती है।
बिल्कुल,
वो अंदर से बाहर वाली अप्रोच।
दूसरी, परिपक्वता का सफर। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक आना जरूरी है, पर असली मंजिल इंटरडिपेंडेंस है, मिलकर जीना और काम करना सीखना। हमारे भारतीय समाज में जहां कम्युनिटी का इतना महत्व है, ये बात और भी फिट बैठती है।
तीसरा, सिद्धांत केंद्रित जीवन। अपने वैल्यूज को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे न्याय, ईमानदारी, सम्मान के साथ अलाइन करना, ये जिंदगी को एक मजबूत एंकर देता है।
और चौथा, वो PPC संतुलन, नतीजों के साथ साथ अपनी क्षमता का भी ध्यान रखना, चाहे वो काम और परिवार का बैलेंस हो या अपनी सेहत और लर्निंग पर ध्यान देना। ये बैलेंस ही सस्टेनेबल सक्सेस लाता है। इस किताब में कई पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे पहले समझने की कोशिश करें फिर अपनी बात समझाएं। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, ये सच में दूसरों के नजरिए को इज्जत देने के बारे में है। मुख्य बात यह नहीं है कि आप अपने शेड्यूल पर क्या प्राथमिकता देते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करते हैं। यह बताता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। अपनी बड़ी चट्टानों को टाइम देना ही पड़ेगा।
हाँ, और ये भी बहुत पावरफुल है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली स्थान होता है, उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है। क्या जबरदस्त बात है! ये याद दिलाता है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं, अपने चुनाव के मालिक हैं। निजी जीत सार्वजनिक जीत से पहले आती है। दूसरों के साथ रिश्ते सुधारने से पहले खुद पर काम करना, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, रोज की जिंदगी में इन्हें लाएं कैसे? पर्सनल लाइफ में आदत 3 इस्तेमाल करें। हर हफ्ते थोड़ा टाइम निकालें, अपनी अलग अलग भूमिकाओं को देखें, पेरेंट, पार्टनर, दोस्त, प्रोफेशनल, खुद के लिए। हर रोल में 1-2 बड़ी चट्टानें तय करें इस हफ्ते के लिए, फिर उन्हें कैलेंडर में जगा दें। आदत 1 प्रैक्टिस करें, जब कुछ गड़बड़ हो तो फौरन रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकें, सोचें, मेरी प्रोएक्टिव प्रतिक्रिया क्या हो सकती है?
प्रोफेशनल लाइफ में अगली मीटिंग में आदत 5 आजमाएं। किसी कलीग की बात को सच में समझने की कोशिश करें। बीच में न टोकें, मन में जवाब ना बनाएं, बस समझें। टीम प्रोजेक्ट में आदत 6, सोचें क्या हम अलग अलग आइडियाज को वेलकम कर रहे हैं ताकि कुछ नया और बेहतर बना सकें। नेगोशिएशन में आदत 4 याद रखें, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे दोनों पार्टीज को लगे कि उनकी जीत हुई है?
रिश्तों में अपने करीबी लोगों के इमोशनल बैंक अकाउंट के बारे में सोचें, आज क्या जमा कर सकते हैं। छोटी सी तारीफ, ध्यान से उनकी बात सुनना, किया हुआ वादा निभाना, झगड़ा हो जाए तो आदत 5 इस्तेमाल करें। मैं तुम्हारी बात और समझना चाहता हूँ, जरा और बताओ।
मेरे लिए इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख है वो शायद यही है कि इफेक्टिवनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है जो अंदर से शुरू होता है। और अपनी भूमिकाओं, रोल्स और लक्ष्यों, गोल्स को साफ साफ जानना कितना जरूरी है, वरना हम बस भागते रहेंगे पर शायद गलत दिशा में।
और मेरे लिए वो PPC बैलेंस वाली बात और आदत 7 आरी तेज करना बहुत हिट करती है। हम अक्सर खुद को इतना निचोड़ देते हैं काम में या जिम्मेदारियों में कि लंबे समय तक टिकी नहीं पाते। खुद पर इन्वेस्ट करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये जरूरत है। और हाँ, प्रोएक्टिव होने की शक्ति, ये जानना कि चुनाव हमेशा मेरे हाथ में है, ये बहुत एम्पावरिंग फीलिंग है।
तो कुल मिलाकर ये 7 आदतें सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है। ये याद दिलाती हैं कि टिकाऊ सफलता और संतुष्टि सिद्धांतों पर टिके चरित्र से आती है, और ये एक अंदर से बाहर की यात्रा है जिसे लगातार रिन्यू करते रहना पड़ता है। शायद सोचने वाली बात यह है कि हमारी कौन सी भूमिका इस समय सबसे ज्यादा ध्यान मांग रही है, और उस भूमिका से जुड़ा कौन सा क्वाड्रेंट 2 का जरूरी काम है जिसे हम टालते जा रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।